सबसे पहले तो ये चूंकि अय्याम फातिमिया भी चल रहे, मेरे जहन में आया है कि थोड़ा सा आप जनाब सैयदा से कुछ शुरू करें।
देखें, मैं यानी ये जो ख़ानदान रिसालत है, जैसे इसमें आपका जो मौजू है कि इस्लाम की नज़र में, तो इस्लाम की नज़र ज़ाहिर है कि रसूल अकरम की जो नज़र है वही, यानी वो इस्लाम ही की नज़र है। हम खुदावंद आलम कुरान में फरमाता है कि हमारा रसूल कुछ कहता ही नहीं जब तक उस पर हम वही नहीं कर देते। तो जो कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला वही कुरान की तालीम है और वही असल इस्लाम है। तो इसमें हम जनाब सैयदा का जिक्र ज़रूर करेंगे, लेकिन चूंकि औरत के मकाम की बात है तो मैं शुरू करूंगी अपने मौजू को आपकी इजाज़त से, अलबत्ता रसूल अकरम के कौल से। आप फरमाते हैं कि तुम्हारी दुनिया की, यानी लोगों से, हमसे, उम्मत से मुखातिब हैं, कहते हैं तुम्हारी दुनिया की तीन चीज़ें मुझे बहुत, मैं उन्हें दोस्त रखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। एक औरत, दूसरे खुशबू, और तीसरी चीज़ नमाज। एक और हदीस है कि आपने कहा कि औरत और नमाज मेरी आँखों का नूर है। तो ये कैफियत रसूल अकरम ने ये जुमला कह के दुनिया को बता दिया कि इस्लाम में औरत की अहमियत क्या है, औरत का मकाम क्या है,
और किस ज़माने में,
और किस ज़माने में, उस ज़माने में जब, और आज भी जब हम देखते हैं तो आप देखें बच्चे जो हैं वो ज़ाया करवाए जाते हैं, साकित करवाए जाते हैं अगर पता चल जाए लड़की है। इसी तरह से यानी औरत को एक खिलौने की तरह, एक जिसे कहते हैं कि एडवर्टिजमेंट की तरह में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। औरतें ठीक है, बहुत पढ़ गई हैं, बहुत लिख गई हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन उनका लिबास आप उन्हीं के मुकाबले मर्दों का लिबास देख लें तो बहुत फ़र्क होता है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं कि आज भी औरत को इतनी तालीम और हर चीज़ के बावजूद वो मकाम नहीं मिला जो उसका असल मकाम है। और रसूल क्या फरमाते हैं कि औरत इतनी बाअज़मत है जैसे नमाज। यानी आप फरमाते हैं कि तुम्हारे दुनिया की जो चीज़ें, हमारी दुनिया की जो चीज़ें हुजूर को पसंद थी उनमें एक औरत है, खुशबू तो एक अलग बात है, मैं उस दूसरी नमाज है। तो यानी इस सतह पर औरत की अजमत को आप बयान फरमा रहे हैं कि औरत इतनी अजमत रखती है दुनिया में, क्यों? इसलिए कि आपकी नज़र बताती है, कुरान की नज़र बताती है कि औरत जो है वो मर्द की मुकम्मल है। मर्द की तकमील उस वक्त तक होती ही नहीं जब तक औरत ना हो, और इसीलिए हज़रत हव्वा को पैदा किया गया।
बिल्कुल,
वो मर्द के सुकून का बाइस है, सिर्फ नस्ल के लिए नहीं, मर्द के ज़हनी सुकून का बाइस है। और जब तक घर में सुकून ना हो उस वक्त तक मर्द कोई तरक्की नहीं कर सकता, माशरा तरक्की नहीं कर सकता, दुनिया तरक्की नहीं कर सकती। तो आपने औरत को जो मकाम कहा कि मेरी नज़र में बहुत अहम है, तो औरत को उस नज़र से देखा जो माशरे को आगे ले जाने वाली है, जिसके बगैर माशरा आगे बढ़ नहीं सकता। आपने वो चीज़ बताई है औरत के लिए। अब आपने जो औरत को देखा, कहा कि एक औरत पैदा होती है, वाकया मैं कभी बयान भी कर चुकी हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक मरतबा आपको नींद आई, बहुत परेशान थे जन्नत में, और तो ख्वाब की कैफियत हुई, जब आँख खुली तो देखा कि एक उन्हीं की तकरीबन उनके जैसे ही शक्ल के कि कोई हस्ती वहाँ मौजूद है। तो आपने पूछा ये कौन है, पूछा तुम कौन हो, कहा मैं हुआ हूँ, कहा तुम कहाँ से आई हो, उनका मुझे खुदा ने बनाया, यही जवाब जाहिर दिया होगा। उसके बाद तो अब आवाज़ कुदरत आई कि आदम इन्हें देख के कैसा महसूस कर रहे हो। कुदरत खुदाबंदी ने सवाल किया कि आदम इस देख के कैसा महसूस कर रहे हो, का सुकून का एहसास कर रहे हो। तो औरत वो है जो मर्द के लिए बाइस सुकून है। इस हैसियत से आपने दुनिया को देखा और इसीलिए औरत के आपने मकाम को बुलंद किया। तो मैंने बताया कि इतना बुलंद मकाम है और इस औरत को पस्त न समझना, इसे कम न समझना। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी मुसलमानों में ऐसे बहुत से अफराद मौजूद हैं जो औरत को पीछे ही रखना चाहते हैं, या उसकी बात को क्या मकली और इस किस्म के अल्फाज से
की गलत तफसीर
भी करते हैं। बिल्कुल
जी मोहतरमा, इस प्रोग्राम को जो अभी आइटम गया इससे पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे, आप फरमा रही थी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में ख़वातीन की कुछ खसूसियात के हवाले से आप फरमा रही थी।
देखिए, खसूसियात का मैंने जैसे अर्ज किया कि औरत जो है वो मर्द की मुकम्मल है, यानी मर्द उसके बगैर तकमील नहीं पाता, वो मर्द के लिए बाइस सुकून है। बहुत से वो काम जो मर्द नहीं कर सकता वो औरत उसकी कुदरत रखती है, उसकी ताकत रखती है, वो कर सकती है। हुसूल इल्म में वो मर्द के बराबर है, पीछे नहीं है कि मतलब वो नहीं सीख सकती, दूसरे सीख, तमाम आजकल तो तमाम मैदानों में औरतों का जो मतलब जितनी तेज़ी से वो तरक्की कर रही हैं उससे आपको इस बात का अंदाज़ा है। इसके अलावा हसास होती है हालात का, समाजी हालात, सियासी हालात, उसका उसे मुकम्मल दर्क, मुकम्मल एहसास, मुकम्मल उसकी मालूमात रखती है वो। ये सारी चीज़ें पैगंबर इस्लाम की नज़र में बयान कर रही हूँ कि आपकी नज़र में ये सारी चीज़ें कि वो औरत ये सारी चीज़ें कर सकती है, और इसके साथ साथ वो मोहब्बतों का सरचश्मा है, वो सुकून का सरचश्मा है, वो घर के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बाइस सुकून होती है घर। इसीलिए कुरान में जब आपने देखा कि हदीस कुदसी है कि खुदावंद आलम जब तारुफ करवा रहा है पंचतन का तो कहता है कि फातिमा तो वह अबूहा व बालोहा व बनूहा, फातिमा है और उनके वालिद हैं और उनके शौहर हैं और उनके बेटे हैं
जी।
तो वो मरकजियत इस्लाम ने इन्हीं खसूसियात और इन जैसी बहुत सारी खसूसियात की वजह से थी। बल्कि मैं तो यानी जो चीज़ें मैंने पढ़ी उससे मैं इस नतीजे पर पहुँची कि जिस तरह खुदावंद आलम ने अपनी सिफात का एक मजमुआ तैयार किया और उन सिफात के मजमुए को एक इंसानी शक्ल दी और उसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, उसी तरह खवातीन की और इंसानी सिफात की एक और उसने तस्वीर मुजस्सम की, एक और उसने शक्ल बनाई और उसका नाम उसने आसमानों में मंसूरा और ज़मीन पर उसने फातिमा जहरा
रखा।
तो है ये जो आपने कहा ना कि ये शहादत के दिन हैं, आपके अय्याम फातिमिया चल रहे हैं, मैं इसलिए अर्ज़ करना चाहती हूँ कि रसूल अकरम ने ये सारी चीज़ें जो औरत के लिए बयान की वो सिर्फ बयान नहीं की बल्कि उन्होंने अपने घर में अपनी बच्ची की परवरिश उसी तरह करके दुनिया के सामने ये नमूना अमल ख्वातीन के सामने रख दिया कि देखो लोग तुम्हें कुछ भी समझते रहे, तुम अपने को कम ना समझना। लोगों ने तो मुझे भी तंग किया है, लोगों ने मेरी बेटी को भी तंग किया, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा क्या मकाम है, और जब तुम खुद अपनी इज्जत करोगी तो तुम्हारी इज्जत होगी, जब तुम खुद अपना लोहा मनवाओगी तो तुम्हारा लोहा दुनिया मानेगी।
इन्हीं ख्वातीन जो है एहसास कमतरी का शिकार ना हो
बिल्कुल। और मर्द हजरात हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है, हत्ता हमने यूरोप वगैरह में भी कि जो ताकत उनको इसलिए दी गई है कि वो घर की हिफाजत करें और औरत की हिफाजत करें और खानदान की हिफाजत करें, उसका इस्तेमाल वो औरत की जिस्मानी कमजोरी के को देख के उसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत गलत करते हैं, और इसी वजह से यूरोप में इस वक्त खानदान जो है बिखरते चले जा रहे हैं। तो अब एक तो चीज़ ये हुई कि औरत कम नहीं है मर्द से, लेकिन दोनों के दरमियान आपस में कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुसाबिका जिसे कहते हैं मुकाबला आ रहा ही कहीं नहीं है दोनों के दरमियान, दोनों के बिल्कुल मैदान अलग अलग हैं। और ऐसे मैदान है कि दोनों मैदानों का होना ही इंसानियत के मैदान को तश्कील देता है, अगर इनमें से एक भी कम हो जाए उसकी बकाए सीम है। तो ये खास बात है यानी इस्लाम की जो इसने औरत को इतनी ज़्यादा अहमियत दी और उसको इतना ज़्यादा मकाम देने की उसने बात कही। तो औरत शुजा है, औरत साबिर है, औरत तालीम यानी तालीम हासिल करती, तालीम याफ्ता है, वो मुअल्लिमा भी है, जहाँ सीखती वहाँ मुअल्लिमा भी है वो। तो इस तरह से रसूल अकरम ने आपकी जो आपके मकाम को यानी औरत के मकाम को जो बयान किया, तो और उसके बाद अपनी बेटी को उसी सांचे में ढाल के खुदावंद आलम ने जिस तरह से औरत को भेजा था, आपने अपनी बेटी को नमूने अमल करार दे दिया दुनिया के लिए। और फिर जो इन सारी चीज़ों ने मिल के जो औरत के हाथ में एक बहुत मज़बूत हथियार दे दिया, वो तरबियत का हथियार है। मर्द तन्हा बच्चों की तरबियत नहीं कर सकता, उसके पास ना हौसला होता है ना वक्त होता है,
उसकी फितरत में नहीं है
उसके। तो खास बात एक ये चीज़ जो बहुत देखने में आई कि मर्द से मुकाबला किया जाता है, यानी जो फेमिनिज्म का है कि हम मर्द से कम
थोड़े, हम तारीफ हो गई है,
हम मर्द से कम हैं या कम नहीं है, वो तो मर्द एक अलग चीज़ है हमारा, और उसका मुकाबला ही नहीं आपस में। जैसे लोग अक्सर कहते हैं देखिए दुनिया में बेहतरीन धोबी जो है, लॉन्ड्रीज जो है, वो सब मर्द चलाते हैं, बेहतरीन बावर्ची जो होते हैं वो मर्द होते हैं, यकीनन ऐसा है, लेकिन हदफ दोनों का फर्क है। देखिए जब मर्द खाना पका रहा है, घर की मजबूरी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जब मर्द बेहतरीन बावर्ची की हैसियत से किसी बड़े होटल में, किसी बड़ी जगह पर, किसी तकरीब में कहीं खाना पका रहा है, तो उसका हदफ रोज़ी कमाना है।
बिल्कुल,
उसका हदफ रोज़ी कमाना है। और जब वो रोज़ी घर में उसके वजह से पैसा लेके आता है, तो औरत का हदफ घर चलाना है।
बिल्कुल,
फ़र्क है दोनों में।
बिल्कुल,
उसका हदफ, मर्द का हदफ अपने पैसों से, अपनी कमाई से मकान बनाना है, अपने बच्चों को एक छत फराहम करना है, अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक महफूज मकाम बनाना है। औरत घर तश्कील देती है, मर्द मकान बनाता है।
बिल्कुल। اسلام میں خواتین کے مقام کے حوالے سے اور جو خدمات خواتین کی ایک معاشرے کے لیے ہوتی ہیں، اس حوالے سے آپ بات کر رہی تھی؟
تو میں عرض کر رہی تھی کہ مرد اور عورت اگر دونوں مل کے کام نہ کریں، یعنی دونوں کی خدمات معاشرے کے لیے نہ ہوں، دین کے لیے نہ ہوں، تو وہ دین اور وہ معاشرہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، پیش رفت تو بہت دور کی بات ہے۔ اب مثال کے طور پر میں نے عرض کیا کہ مرد جو ہے اس کا کام ہے حفاظت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ سرحدوں پہ آج کل آپ جائیں تو دیکھیں ہیں، یعنی بہت سارے ملکوں میں ہیں کہ عورتیں بھی ہیں فوج میں، ایران میں بھی ہیں عورتیں فوج میں، لیکن بس پھر وہی کہ ان کا کردار الگ طرح کا دیا جو ان کا جو پولیس میں بھی ہے، کمانڈو بھی ہے، لیکن جہاں پر ان کی ضرورت ہوتی وہیں پر، مقابلے میں نہیں کہ مرد یہ کر رہا ہے تو اس لیے ہم بھی یہ کریں، ایسا نہیں۔ عورت کی خاص بات یہ ہے کہ وہ تمام کام کر لیتی ہے جو اس کے اپنے ہیں، اس کے علاوہ جو مرد کے کام ہے، جب خدا نخواستہ کوئی عورت بیوہ ہو گئی، کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے، کوئی شوہر بیمار ہو گیا، تو وہ پھر باہر کے بھی سارے کام انجام دیتی ہے، اور اس وقت وہ ایک مردانہ وار مقابلہ کرتی ہے،
بالکل،
یعنی گھر کے اندر وہ زنانہ وار مقابلہ کرتی ہے حالات کا، لیکن جب باہر نکلتی ہے تو مردانہ وار مقابلہ کرتی ہے۔ تو مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو اس سلسلے میں ان کی ہمت افزائی کریں، ان کی نیکی، ان کی جو خوبیاں ہیں، ان کی جو صفات ہیں، انہیں وہ نکھاریں، جیسے ہمارے رسول نے، جیسے حضرت علی علیہ السلام نے نکھارا چیزوں کو، جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں موجود تھی، تو وہ نکھارنے میں مدد کریں۔ یہ نہیں کہ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا، بس اب آپ دسویں سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے،
ہاں باہر نکل رہی ہیں خواتین جیسے، تو ان کو پریشان کیا جا رہا ہے،
ہاں تو اس کے لیے تو جسے کہنا چاہیے کہ گورنمنٹس کو یا خود مردوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ ان اصولوں پہ اگر چلیں کہ جو اسلام نے انہیں بتائے ہیں، تو شاید یہ حالات پیش نہ آئیں۔ میں یہ عرض کر رہی تھی کہ مرد جو ہے وہ خاندان کی حفاظت کرتا ہے، اور عورت جو ہے وہ خاندانی تہذیب کی، خاندانی روایات کی حفاظت کرتی ہے، انہیں پیش رفت کی طرف بڑھاتی ہے، اور اپنے بچوں میں وہ ڈال کے آئندہ نسلوں کو اس راہ پر گامزن کرتی ہے، جو یہ مرد کے بس کی بات نہیں ہے ایسا کرنا۔ رسول اکرم کے سلسلے میں عرض کروں کہ آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، کہ بہت چھوٹی تھیں جب شاب ابو طالب میں، ظاہر ہے کہ وہاں بڑی ہوئی کن حالات میں، جب باہر نکلے تو ایک سال کے اندر ہی ماں کا انتقال ہو گیا، بہت چھوٹی تھی، کہتے ہیں کہ بے چین ہوتی تھیں بعض وقت، تو بابا سے پوچھتی تھیں جا کے کہ ماں کہاں ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جب آپ نے بہت بے چین ہو کے پوچھا، اور رسول بہت ظاہر وہ پریشان ہو گئے، اور تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ اے رسول، کہہ دیجئے کہ تمہاری ماں جنت کے زبرجد کے، یعنی جو بہت
محل ہے،
زبر پتھر ہے، اس کے محل میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں، تب شاید آپ کی بیٹی کو قرار آ جائے۔ تو جہاں اس بچی کو آپ نے اس طرح کر کے پالا، اس کا دل ہاتھ میں لے کے، وہیں بچی کو اتنی جرأتیں دیں کہ بچپن سے جو اسلام کو پھیلانے میں آپ کی ذمہ داریاں تھیں، اس میں حضرت زہرا برابر سے آپ کی سہیم نظر آتی ہیں۔ چھوٹی سی بچی مسجد میں جاتی ہے اور جا کے دیکھتی ہے کہ باپ کی پیٹھ پر اونٹ کی آنتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ اس کو جا کے صاف کرنا، اس کو ہٹانا، باپ کو پیار کرنا، باپ سے لپٹ جانا، ان کو تسلی دینا کہ مثلا میں ہوں آپ کا غم بٹانے کے لیے، آپ اکیلے نہیں ہیں، اور اس کے بعد بیٹی کو اور آگے بڑھانا۔ تو بیٹی کو ساتھ ساتھ سے، یعنی جو قرآنی علوم تھے، وہ جو بتا رہے تھے، جو سکھا رہے تھے، جو اپنے کردار سے دکھا رہے تھے، اس کے علاوہ سیاسی حالات سے بھی مطلع کرنے کے لیے انہیں باہر لا رہے تھے۔ اور حضرت زہرا جو تھیں وہ وہاں اس زمانے کے سیاسی اور سماجی حالات سے بھی اسی طرح واقف تھیں جیسے خود رسول اکرم واقف تھے، اور یہی ہماری آج کی عورتوں کو ہونا چاہیے، اسی لیے انہیں نمونہ عمل قرار دیا گیا، ورنہ ہم صرف اگر کپڑوں اور فیشن اور کھانوں اور ریسیپیز اور اس ٹائپ کی باتوں میں لگ گئے تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، اور جب قبر میں فرشتے سوال کریں گے کاہے میں وقت گزارا، تو پتہ چلا کہ ریسیپی ایک دوسرے سے پوچھنے میں اور صرف بڑے اچھے کپڑے۔
ایک عورت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے صرف انہی چیزوں میں رہے، اسلام اور سیاست آپس میں جدا نہیں ہے، ایک خاتون کو جو موجودہ دور کے حالات ہیں اس کے بارے میں بھی باخبر ہونا چاہیے۔
اور حضرت زہرا کے سلسلے میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ 9 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے، باپ کی پوری ذمہ داریاں دیکھتی ہوئی آئی تھیں، حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں آئیں تو یہاں تو یہ تو نہیں تھا کہ یہ دولت کے ریل پیل ہے اور مطلب بالکل اب کوئی کچھ کرنا ہی نہیں ہے، یہاں پر آئیں تو آپ کی ذمہ داریاں وہ رسالت کو سنبھالنے کی ذمہ داریاں تھیں، یہاں ولایت اور امامت کو سنبھالنے کی ذمہ داریاں بھی آپ کے ساتھ آ گئیں، آپ کے شانوں پر آ گئیں۔ اور اس کی خاص بات یہ کہ ان پریشانیوں کے دور میں بھی رسول اکرم کے پاس جب رہیں تو آپ فرماتے ہیں، اور جب حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں آئیں تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے زہرا کے چہرے کو دیکھ کے سکون حاصل ہوتا ہے، यानी इस तरह से घर में खाने को नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, और जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम घर में आते हैं तो हज़रत ज़हरा के चेहरे पे परेशानी है। कोई ये नहीं कहता कि आप हज़रत ज़हरा की तरफ, यानी उनका जो दौर था उसमें इस्लाम की, जिसमें यानी मुसलमानों की जो हालत थी उसके तहत आप लोग जो फाका कशी कर रहे थे, खुदा नखास्ता आप फाका कशी करें, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि उन हालात में भी सुकून कैसे ख़ानदान को फराहम किया जाता है, और आप उस हालात में भी जो थी वो सुकून फराहम करती थी और बताती थी कि सियासी हालात से मैं भी पूरी तरह बाखबर हूँ और मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी अली इब्ने अबी तालिब।
बातचीत कर रहे हैं मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी साहिबा के साथ, बड़ा ही अहम मौजू है, बात आप कर रही थी जनाब सैयदा के हवाले से, जी फरमाइए उसी बात को आगे बढ़ें।
मैं अर्ज़ कर रही थी कि रसूल अकरम ने जो तरबियत दी थी उसने हज़रत ज़हरा को बहुत ज़्यादा शुजा, बहुत ज़्यादा साबिर, बहुत बड़ी आलिमा, बहुत बड़ी सियासतदान, सभी कुछ बना दिया। सियासतदान आज की जो गंदी बाज़ मुल्कों में सियासतें उनकी तरह की बात मैं नहीं कर रही हूँ। सियासत का मतलब होता है क़यादत, सियासत का मतलब होता है रहनुमाई, यानी जो सच्ची सियासत जिसमें हक और बातिल अलग अलग किए जा रहे हों उसे कहते हैं सियासत। तो बहुत बड़ी सियासतदान, बहुत बड़ी आलिमा थी। आपका मैंने अर्ज़ किया था शुरू में कि आसमानों में आपका नाम मंसूरा और ज़मीन पर फातिमा है, तो मंसूरा का मतलब है नुसरत दीन, यानी अल्लाह के दीन की नुसरत करने वाली। सबसे बड़ी नुसरत क्या होती है? जब आप हक व बातिल की पहचान हो जाए जिस इंसान को, वो सबसे बड़ा नासिर है, दूसरों को वो पहचान करवाएगा। जिसे खुद ही नहीं पता हक व हक और बातिल में फ़र्क क्या है, तो ज़ाहिर है वो तो गुमराह करके रख देता है लोगों को, कभी चाहते हुए और कभी ना चाहते हुए। तो जनाब फातिमा ने जो काम किए इस हक व बातिल की पहचान के लिए और दीन की नुसरत के लिए, उसमें कुछ काम तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए, ज़िंदगी और ज़िंदगी में, ज़िंदगी के दौरान और लोगों के लिए जो मौजूद थे उस ज़माने में, कुछ काम उन्होंने ऐसे किए कि जो आइंदा ज़माने के लिए किए। जो अपनी ज़िंदगी में किए उसमें यह है कि एक तो जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हर जगह जो हिमायत आपने की, रिसालत की जो हिमायत जिस तरह से की रसूल अकरम की, इसके अलावा औलाद की तरबियत की कि उनकी औलाद के खून ने ही इस्लाम के दरख्त को सींचा है, चाहे वो हसन और हुसैन की शक्ल में हो, चाहे आइंदा नस्लों की शक्लों में हो, कि उनकी औलाद ने ही सारी कुर्बानियाँ दी हैं, और जो इस वक्त भी फैले हुए हैं लोग दुनिया में, जो सादात हैं, जो उनकी नस्ल के हैं, जो उनके पैरों हैं, वो आज भी उनके लिए उनके नाम पर अपनी जानें दे रहे हैं और हक़ व बातिल का को अलग कर रहे हैं और हक़ का दिफा कर रहे हैं। एक और चीज़ जो थी कि इस दिफा के अलावा जो उन्होंने जैसे अपने आखिर में नहीं, जो अपने तौर पर उन्होंने दिखाया कि जनाब सैयदा के लिए एक बड़ी ख़ास बात ये, वो बहुत ज़्यादा पर्दा करती थी, और वो जनाब उन्होंने इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा जनाजा रात को उठे, पर्दा करती थी लेकिन फिर मस्जिद में कौन गया था?
बिल्कुल
उन्होंने ये बताया कि नाहक बिला वजह जाके मर्दों में बैठने का कोई तुक नहीं है,
बिल्कुल
तुम अपनी शख्सियत का दिफा करो, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत हो, जब कहीं तुम्हें हक का दिफा करना हो, जब कभी इस्लामी उसूलों का दिफा करना हो, तो तुम मस्जिद में जाओ, पूरे हिजाब के साथ जाओ, पूरे हिजाब के साथ जाओ। और आप गई हैं और आपने अपने हक़ के लिए बहस की है, आपने हज़रत अली के हक़ के लिए बहस की है, क्योंकि उसमें इस्लाम के दिफा की बात थी, वरना ज़हरा की ज़िंदगी में उन्हें कितने पैसों की ज़रूरत थी। वो तो वैसे ही जो आज इमाम खुमैनी ने इस दौर में कहा कि हम तो आशूरा वाले लोग हैं और हम रमज़ान वाले लोग हैं, हमें मौत से ना डराओ और हमें भूख से ना डराओ, तो वो लोग तो वैसे ही फाका करने में माहिर थे और अपनी चीज़ें देने में। तो जनाब सैयदा को अपने लिए नहीं चाहिए थी जिन हकूक़ के दिफा के लिए वो गईं। तो उन्होंने औरत को सिखाया कि जब हक़ के दिफा की बात आए तो डरना नहीं, बस खुदा का सहारा लेना और उसके बाद तुम जाके अपना हक़ का दिफा करना। तो इसलिए वो पहली बार कहते हैं मस्जिदुन नबी में वो गई नहीं थी इससे पहले, पहली बार जब गई हैं तो रसूल के बाद गई हैं और अपने हक़ के दिफा के लिए गई हैं, मस्जिद भरी हुई थी उसमें गई हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो पर्दा कहा जाता है वो गलत है। तो ये उन्होंने औरत को एक दर्स दिया, और अपने बात के लिए जो उन्होंने दर्स दिया है उसमें मैं दो जगह पे देखती हूँ कि एक मरतबा हज़रत अली बिल्कुल आपका तकरीबन आखिरी वक्त है या बिल्कुल आखिरी घंटे हैं कुछ, और उसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, सोचिए हज़रत अली जैसा शुजा जिसको मुश्किल कुशा कहा जाता है, वो बैठे हुए हैं, सीने से सर लगाए हुए हैं हज़रत फातिमा का, और उनसे बातें कर रहे हैं, वो बातें कर रही हैं, कहती हैं आप जो हज़रत अली रोते जाते हैं कि मैं तुम्हारा जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत तन्हा हो जाऊँगा, और तुमने मुझे बड़ा सहारा दिया है ज़िंदगी में, जो भी बातें हैं शौहर और बीवी के दरमियान, तो आप उनके आंसू पोंछ के अपने बदन पे लगा रही हैं। क्या बता रही हैं कहती है अली कहा ये क्यों कर रही हो, कहा मैं इसलिए कि मज़लूम के आंसू जो हैं वो इंसान को जहन्नुम की आग से बचाते हैं। ये दुनिया को बता रही कि अली मज़लूम है
जी,
ये आइंदा नस्लों के लिए। इसी तरह जो आपने वसीयतें की हैं और कुछ लोगों के लिए कहा कि उन्हें मेरे जनाजे में ना आने देना, जनाजा रात को उठाना ताकि लोगों को पता ना चले जिन्होंने मुझसे बेवफाई की, तो फिर और मेरी कब्र का किसी को पता ना बताना, ये वसीयतें जो की, इसकी वजह यही थी कि वो आइंदा यानी तारीखों में तो लिखा गया ना, आइंदा नस्लों को, आइंदा नस्लों को ये उन्हें बताना है, और ये बताना कि जो आज का जवान पूछेगा कि क्यों उनकी कब्र मालूम नहीं है, क्यों उनको रात को दफन किया गया, तो उसके छुपाने के लिए कहा, सिर्फ ये कहा जाता है कि पर्दे की वजह से, वरना जब एक ताबूत के अंदर रख दिया गया तो फिर पर्दे की तो कोई बात नहीं
जी।
तो ये चीज़ जनाब सैयदा ने अगर सियासी हालात का इतना दर्क ना होता तो नहीं कर सकती थी। तो यही बीबी ने समझाया, यही रसूल की बेटी ने हमको समझाया कि देखो तुम कब मर्द बन सकती हो, कब तुम औरत बन सकती हो, कब सियासतदान बन सकती हो, और कब तुम जंगों में जाके एक डॉक्टर एक नर्स बन सकती हो और मर्दों की किस तरह मदद कर सकती हो, और कब घर में एक बीवी और एक माँ की हैसियत से तुम मर्दों को उनकी पेशरफ्त में मदद कर सकती।
बहुत शुक्रिया मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी साहिबा, बहुत प्यारी गुफ्तगू मालूमाती जिससे अंदाज़ा हुआ, मालूम हुआ और मालूम है हमारे तकरीबन सभी नाज़रीन को, लेकिन बिला ज़रूरत जाने की ज़रूरत नहीं, बिला ज़रूरत मर्दों के साथ मुख्तलित प्रोग्रामों में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब ज़रूरत पेश आती है तो इस्लाम कभी भी रुकावट नहीं बना है ख़वातीन की तरक्की की राह में। और इस्लाम पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बैकवर्ड मज़हब है, तो ऐसा हरगिज़ क्योंकि समझ में अगर हदीसें रिवायात और कुरान की आयात अगर किसी को समझ में नहीं आई तो वो उनकी अपनी समझ की कमी है, ना आगाही है, वरना इस्लाम ने कोई रुकावट पैदा नहीं की है।